एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उनका नाम सुनते ही अक्सर अर्थशास्त्र दिमाग में आता है, एडम स्मिथ।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन उन्हें सिर्फ आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहना शायद पूरी कहानी नहीं बताता है ना, वो तो एक गहरे नैतिक दार्शनिक भी थे।
बिल्कुल सही कहा आपने, और आज हमारी कोशिश यही है कि हम एडम स्मिथ की इस पूरी तस्वीर को समझें, उनके जीवन की यात्रा, उनके वो विचार जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया बदला, खासकर वो मशहूर अदृश्य हाथ और श्रम विभाजन वाली बातें, उनकी दो महान किताबें, और सबसे जरूरी आज भी उनके विचार क्यों मायने रखते हैं।
हाँ, और इसके लिए हम स्मिथ पर लिखे गए दो खास लेखों का सार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमें उनकी सोच की गहराई और उसके फैलाव को समझने में मदद करेंगे।
तो सवाल उठता है कि स्मिथ इतने अहम क्यों हैं? देखिए, उन्होंने न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि समाज, नैतिकता और इंसान के बर्ताव के बारे में हमारी समझ को एक तरह से बुनियादी तौर पर बदल दिया। वो उस दौर में थे जिसे स्कॉटिश ज्ञानोदय कहते हैं, 18वीं सदी का स्कॉटलैंड। वो उस वक्त विचारों और बौद्धिक बहस का एक बड़ा केंद्र बन गया था।
अच्छा,
वहाँ तर्क, अनुभव और इंसानी तरक्की पर बहुत जोर था।
तो चलिए कहानी वहीं से शुरू करते हैं, उस माहौल से जिसने स्मिथ जैसे विचारक को गढ़ा। उनका समय 1723 से 1790, ये स्कॉटिश ज्ञानोदय का सबसे कह सकते हैं रोशन दौर था।
जी,
ये वो वक्त था जब लोग पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठा रहे थे, हर चीज को तर्क की कसौटी पर कस रहे थे और मान रहे थे कि इंसान अपनी समझ से दुनिया को बेहतर बना सकता है।
हाँ, और ये एक बड़े बदलाव का भी दौर था। यूरोप सामंती व्यवस्था से निकलकर पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा था।
सही,
कारखानों की चिमनियां धुआं उगरने लगी थी, मतलब औद्योगिक क्रांति दस्तक दे रही थी, विज्ञान का दबदबा बढ़ रहा था। इसी उथल पुथल भरे माहौल में स्मिथ ने व्यापार, सरकार की भूमिका और इंसान के स्वभाव जैसे बड़े सवालों पर सोचना शुरू किया।
और वो अकेले नहीं सोच रहे थे, जाहिर है उनके आसपास कई बड़े दिमाग थे जैसे डेविड ह्यूम। वो तो उनके दोस्त भी थे शायद।
हाँ, डेविड ह्यूम उनके बहुत गहरे दोस्त थे और खुद भी एक महान दार्शनिक। फिर फ्रांसिस हचिसन, ग्लासगो में उनके शिक्षक, जिनका स्मिथ की नैतिकता की समझ पर बहुत असर पड़ा।
अच्छा,
बाद में जब वो यूरोप घूमने गए तो उनकी मुलाकात वोल्टेयर और फ्रांस के फिजियोक्रेट्स से हुई।
फिजियोक्रेट्स ये कौन थे?
फिजियोक्रेट्स ये वो विचारक थे, खासकर फ्रांसुआ केने जैसे लोग, जो मानते थे कि किसी देश की असली दौलत उसकी जमीन और खेतीबाड़ी से आती है, ना कि सोने चांदी के ढेर से।
दिलचस्प।
इस मुलाकात ने स्मिथ के आर्थिक विचारों को एक नई दिशा दी। और हाँ, एडमंड बर्क, सैमुअल जॉनसन जैसे लोग भी उनके समकालीन थे। ये सब मिलकर उस व्यापक यूरोपीय ज्ञानोदय का हिस्सा थे जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।
उस वक्त की बड़ी घटनाएं भी तो उनकी सोच पर असर डाल रही होंगी, जैसे युद्ध या क्रांतियां।
जरूर जरूर, जैसे 7 साल चला युद्ध या फिर अमेरिकी क्रांति जिसने उपनिवेशवाद और आजादी पर नई बहस छेड़ दी। और ब्रिटेन में जो औद्योगिक बदलाव हो रहे थे, स्मिथ उन्हें अपनी आंखों से देख रहे थे। इन सब ने मिलकर व्यापार, सरकार और इंसानी रिश्तों के बारे में उनकी सोच को मजबूत किया।
हाँ, खासकर अमेरिकी क्रांति, वो तो वेल्थ ऑफ नेशंस के छपने वाले साल ही शुरू हुई है ना? 1776।
बिल्कुल, ये उनके मुक्त व्यापार और उपनिवेशवाद की आलोचना वाले विचारों के लिए एक जीती जागती मिसाल बन गई।
ये तो हुआ उनके समय का माहौल, पर खुद स्मिथ की कहानी कहाँ से शुरू होती है? उनका शुरुआती जीवन कैसा था?
स्मिथ का जन्म स्कॉटलैंड के पूर्वी तट पर बसे एक छोटे से शहर करकैल्डी में हुआ था। एक दुखद बात ये थी कि उनके पिता, जो कस्टम विभाग में थे, उनके जन्म से कुछ महीने पहले ही गुजर गए थे।
ओह।
तो उनका पूरा पालन पोषण उनकी माँ ने ही किया।
पढ़ने लिखने में बचपन से ही तेज थे शायद, ऐसा सुना है।
हाँ बहुत, कहते हैं किताबें ही उनकी दुनिया थी। और देखिए, सिर्फ 14 साल की उम्र में वो ग्लासगो यूनिवर्सिटी पहुँच गए।
14 साल में?
जी, वहाँ उनकी मुलाकात हुई प्रोफेसर फ्रांसिस हचिसन से, जिन्होंने उन्हें नैतिक दर्शन पढ़ाया। हचिसन का मानना था कि इंसान के अंदर स्वाभाविक रूप से नैतिकता और दूसरों के प्रति सहानुभूति होती है। इस विचार ने स्मिथ पर गहरी छाप छोड़ी।
फिर वो ऑक्सफोर्ड भी गए थे?
हाँ, स्कॉलरशिप पर ऑक्सफोर्ड के बैलियॉल कॉलेज गए, लेकिन वहाँ का माहौल उन्हें कुछ कह सकते हैं खास पसंद नहीं आया।
क्यों?
उन्हें लगा कि ग्लासगो में बौद्धिक बहस और खुलापन ज्यादा था, जबकि ऑक्सफोर्ड थोड़ा पिछड़ा हुआ और सुस्त सा है।
अच्छा, तो ऑक्सफोर्ड से लौटकर उनके करियर ने क्या मोड़ लिया?
वापस आकर पहले उन्होंने एडिनबर्ग में कुछ लेक्चर दिए और फिर 1751 में उन्हें अपने पुराने कॉलेज ग्लासगो यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। पहले उन्होंने तर्कशास्त्र पढ़ाया, फिर नैतिक दर्शन। ये उनके जीवन का शायद सबसे सुखद और प्रोडक्टिव दौर था। उनके पढ़ाने का अंदाज बहुत पसंद किया जाता था और यहीं उनके वो विचार पनपने लगे जो बाद में उनकी किताबों में सामने आए।
लेकिन फिर उन्होंने प्रोफेसरशिप छोड़ दी, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। सुना है एक रईसदादे के ट्यूटर बन गए थे।
हाँ, ये एक बड़ा और शायद अप्रत्याशित मोड़ था। 1764 में उन्होंने ग्लासगो की प्रतिष्ठित प्रोफेसरशिप छोड़कर ड्यूक ऑफ बकलेज के निजी शिक्षक बनना स्वीकार कर लिया।
पर क्यों?
अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे शायद दो वजहें थी। एक तो अच्छी खासी तनख्वाह और पेंशन, और दूसरा यूरोप घूमने का मौका
जो उन्हें मिला।
और इस यात्रा का उनके विचारों पर क्या असर पड़ा?
काफी असर पड़ा होगा।
हाँ, बहुत गहरा। इस नौकरी के सिलसिले में वो करीब 3 साल फ्रांस और स्विट्जरलैंड में रहे। वहाँ उनकी मुलाकात उस वक्त के बड़े बड़े विचारकों से हुई, जैसे वोल्टेयर और खासकर पेरिस में फिजियोक्रेट्स, जिनमें फ्रांसवा केने प्रमुख थे। इन मुलाकातों और बहसों ने स्मिथ की आर्थिक समझ को और तराशा। उन्हें व्यापार और दौलत के बारे में सोचने के नए औजार दिए।
और यात्रा से लौटने के बाद फिर क्या किया उन्होंने?
वो वापस कर्क कैल्डी आ गए और अगले 10 साल उन्होंने अपनी महान कृति वेल्थ ऑफ नेशंस लिखने में लगाए।
10 साल?
जी हाँ। और जीवन के आखिरी सालों में 1778 से 1790 तक उन्होंने एडिनबर्ग में सीमा शुल्क आयुक्त यानी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स का पद संभाला।
ये तो बड़ी विडंबना है। मतलब मुक्त व्यापार का सबसे बड़ा पैरोकार कस्टम ड्यूटी वसूलने का काम कर रहा था,
है ना? और ये वही पद था जो कभी उनके पिता के पास था।
कमाल है।
बिल्कुल, इतिहास कभी कभी ऐसे मजेदार मोड़ लेता है। लेकिन इस पद पर रहते हुए उन्हें व्यापार, टैक्स और सरकारी कामकाज का व्यवहारिक अनुभव मिला, जो शायद उनकी सोच को और पुख्ता करने में काम आया होगा।
हाँ, ये हो सकता है।
उन्हें बाद में ग्लासगो यूनिवर्सिटी का मानद रेक्टर भी चुना गया, जो उनके लिए बड़े सम्मान की बात थी।
अब आते हैं उनकी किताबों पर। ज्यादातर लोग तो वेल्थ ऑफ नेशंस को ही जानते हैं, लेकिन उनकी पहली बड़ी किताब तो कोई और थी।
हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। उनकी पहली महत्वपूर्ण किताब 1769 में आई थी, जिसका नाम था द थियोरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स,
नैतिक भावनाओं का सिद्धांत।
जी, नैतिक भावनाओं का सिद्धांत। इसी किताब ने उन्हें यूरोप में पहचान दिलाई थी। और हैरानी की बात है कि आज अर्थशास्त्र के लिए जाने जाने वाले स्मिथ की पहली प्रसिद्धि एक नैतिक दार्शनिक के तौर पर हुई।
तो इस किताब में उन्होंने क्या बताया? नैतिकता के बारे में उनके क्या विचार थे? मतलब क्या कहा उन्होंने?
स्मिथ ने इसमें यह समझाने की कोशिश की कि हम इंसानों के अंदर सही गलत का एहसास वो कैसे पैदा होता है। उनका कहना था कि यह हमारी सहानुभूति की क्षमता से आता है।
सिंपथी या एम्पथी?
हाँ, दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की काबिलियत। हम कल्पना करते हैं कि एक निष्पक्ष दर्शक या इम्पार्शियल स्पेक्टेटर हमारे कामों को देखकर क्या सोचेगा, और इसी से हम अपने व्यवहार को आंकते हैं।
अच्छा,
ये सहानुभूति ही है जो समाज को आपस में जोड़े रखती है, वरना हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचे तो, जैसा आपने कहा, समाज चल ही नहीं सकता।
दिलचस्प। तो पहले नैतिकता की नींव रखी और फिर आई उनकी वो किताब जिसने अर्थशास्त्र की दुनिया ही बदल दी, 1776 में प्रकाशित, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस।
बिल्कुल, इसे अक्सर वेल्थ ऑफ नेशंस कहा जाता है और ये आर्थिक सोच के इतिहास में एक मील का पत्र है, इसमें कोई शक नहीं। इसका केंद्रीय तर्क क्रांतिकारी था कि जब हर व्यक्ति अपना भला यानी सेल्फ इंटरेस्ट सोचकर काम करता है, तो बाजार की प्रक्रियाएं उसे इस तरह से ढालती हैं कि अनजाने में ही पूरे समाज का भला हो जाता है।
यही वो अदृश्य हाथ वाली बात है जिसका जिक्र बार बार आता है।
हाँ, उसी से जुड़ी हुई। हम उस पर अभी और बात करेंगे। स्मिथ ने इस किताब में उत्पादन कैसे होता है, चीजों का लेन देन कैसे होता है और इन सब में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसका एक पूरा व्यवस्थित ढांचा पेश किया।
और उन्होंने उस समय की प्रचलित सोच को चुनौती दी है ना, वो मर्केंटलिस्ट वाली।
जी, मर्केंटलिस्ट सोच को।
वो क्या मानते थे?
वो मानते थे कि किसी देश की दौलत उसके पास जमा सोने चांदी से तय होती है।
हाँ।
इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा निर्यात करने और आयात कम करने पर जोर देते थे।
अच्छा, सोना इकट्ठा करो बस।
हाँ, स्मिथ ने कहा, नहीं, देश की असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि उसके लोगों की उत्पादन करने की क्षमता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी वो कितना सामान और सेवाएं पैदा कर सकते हैं।
समझ गई। और उनकी कोई और किताब भी थी?
हाँ, उनकी मृत्यु के बाद 1795 में कुछ निबंधों का संग्रह प्रकाशित हुआ, एसेज ऑन फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स, दार्शनिक विषयों पर निबंध।
अच्छा।
इसमें खगोल विज्ञान, भौतिकी का इतिहास जैसे विषयों पर उनके लेख थे। इससे पता चलता है कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ अर्थशास्त्र या नैतिकता तक ही सीमित नहीं थी, वो एक बहुत व्यापक विचारक थे।
चलिए, अब स्मिथ के उन बड़े विचारों को थोड़ा और खोलते हैं जिन्होंने दुनिया पर इतना गहरा असर डाला। सबसे पहले वही अदृश्य हाथ या इनविजिबल हैंड। ये सुनने में बड़ा जादुई सा लगता है, क्या मतलब था उनका? क्या बाजार अपने आप सब ठीक कर देगा?
देखिए, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। अदृश्य हाथ एक रूपक है, कोई जादुई शक्ति नहीं।
अच्छा।
स्मिथ का कहना था कि मुक्त बाजार में जब लोग अपने फायदे के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जैसे एक नानबाई बेहतर रोटी बनाकर ज्यादा ग्राहक चाहता है या एक ग्राहक अच्छी और सस्ती रोटी ढूंढता है, तो ये आपसी लेन देन और प्रतिस्पर्धा अपने आप कीमतों को तय करती है, संसाधनों का सही इस्तेमाल करवाती है और जरूरत की चीजें वहां पहुंचाती हैं जहां उनकी मांग है। ये सब बिना किसी सरकारी योजना या आदेश के हो जाता है, मानो कोई अदृश्य हाथ इसे निर्देशित कर रहा हो। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, स्मिथ ने ये कभी नहीं कहा कि बाजार को पूरी तरह बेलगाम छोड़ देना चाहिए।
अच्छा, तो ऐसा नहीं कहा उन्होंने?
नहीं, वो मानते थे कि धोखाधड़ी रोकने, अनुबंध लागू करने और सार्वजनिक हित के कुछ कामों के लिए सरकार की जरूरत है।
समझ गई। तो ये अदृश्य हाथ बिना किसी सहारे के काम नहीं करता। और दूसरा बड़ा विचार था श्रम विभाजन, डिविजन ऑफ लेबर।
हाँ,
इसका उन्होंने एक पिन फैक्ट्री का बड़ा मशहूर उदाहरण दिया था।
हाँ, ये वेल्थ ऑफ नेशंस के शुरुआती हिस्सों में ही आता है, बहुत प्रभावशाली उदाहरण है।
स्मिथ ने बताया कि अगर एक अकेला आदमी पिन बनाने की पूरी प्रक्रिया करे, तार काटना, सीधा करना, नोक घिसना, ऊपर का सिरा लगाना, पॉलिश करना, तो शायद दिन में 1 या 20 पिन ही बना पाए,
मुश्किल से।
हाँ, लेकिन अगर इसी काम को 10-18 अलग अलग लोगों में बांट दिया जाए और हर व्यक्ति सिर्फ एक ही काम में माहिर हो जाए, विशेषज्ञ बन जाए,
स्पेशलाइजेशन,
बिल्कुल स्पेशलाइजेशन, तो वो सब मिलकर एक दिन में हजारों पिन बना सकते हैं। यही है श्रम विभाजन और विशेषज्ञता की ताकत, जिससे उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है और चीजें सस्ती होती हैं। यही आर्थिक तरक्की का इंजन है। लेकिन स्मिथ ने इसकी एक चेतावनी भी दी थी, है ना, कि लगातार एक ही जैसा काम करने से इंसान का दिमाग वो कुंद हो सकता है।
बिल्कुल, ये स्मिथ की सोच की गहराई दिखाता है। उन्होंने माना कि श्रम विभाजन आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद है, लेकिन साथ ही चिंता भी जताई कि अगर कोई मजदूर जिंदगी भर सिर्फ एक छोटा सा नीरस काम करता रहेगा तो उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसकी रचनात्मकता खत्म हो सकती है। इसलिए उन्होंने शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया ताकि लोगों का दिमागी विकास होता रहे।
और फिर है सहानुभूति और नैतिक भावनाएं, जो उनकी पहली किताब का मूल था। ये आर्थिक विचारों से कैसे जुड़ता है? ये दोनों अलग नहीं है?
ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और ये बिल्कुल अलग नहीं है। स्मिथ मानते थे कि इंसान सिर्फ स्वार्थी नहीं होता, उसमें दूसरों के दर्द और खुशी को महसूस करने की स्वाभाविक क्षमता होती है।
यही सहानुभूति हमें एक दूसरे से जोड़ती है, समाज में भरोसे का माहौल बनाती है और नैतिक नियम कायदे विकसित करने में मदद करती है। और यही नैतिक ढांचा उस स्वार्थ आधारित बाजार को ठीक से काम करने के लिए जरूरी है।
अच्छा, तो बाजार को भी नैतिकता चाहिए?
बिल्कुल, बिना भरोसे और नैतिकता के बाजार सिर्फ धोखाधड़ी और लूट खसोट का अड्डा बन जाएगा।
और चौथा विचार, प्राकृतिक स्वतंत्रता, नेचुरल लिबर्टी, इसका क्या मतलब है?
इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों को अपना जीवन जीने, अपना पेशा चुनने, अपनी संपत्ति रखने और अपनी मर्जी से व्यापार करने की आजादी होनी चाहिए, जब तक वो दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं या धोखाधड़ी ना करें।
ठीक है।
स्मिथ का मानना था कि जब लोगों को ये प्राकृतिक स्वतंत्रता मिलती है और कानून का राज होता है तो समाज सबसे अच्छी तरह फलता फूलता है। सरकार का काम इसमें बेवजह दखल देना नहीं बल्कि इस स्वतंत्रता की रक्षा करना और एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली देना है।
तो इन सब विचारों का कुल मिलाकर असर क्या हुआ, मतलब समाज पर, सोच पर?
असर तो जबरदस्त हुआ। स्मिथ ने अर्थशास्त्र को एक बिखरे हुए विषय से उठाकर एक व्यवस्थित विज्ञान बना दिया। उन्होंने दिखाया कि आर्थिक घटनाओं के पीछे भी नियम होते हैं जिन्हें समझा जा सकता है। और उनके नैतिक विचारों ने यह समझाया कि कैसे हमारी व्यक्तिगत भावनाएं समाज के ताने बाने को बुनती हैं। आज भी अर्थशास्त्री, नीति निर्माता और यहां तक कि दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक भी उनके विचारों से जूझते हैं और सीखते हैं।
अगर हम स्मिथ की तुलना उनके समय के या बाद के कुछ और बड़े विचारकों से करें तो क्या खास बातें सामने आती हैं? जैसे उनके दोस्त डेविड ह्यूम से वो कितने अलग थे?
ह्यूम थोड़े ज्यादा शक्की मिजाज के थे, खासकर इंसानी तरक्की को लेकर। स्मिथ ह्यूम के मुकाबले ज्यादा आशावादी थे कि इंसान अपनी समझ और सही संस्थाओं के जरिए बेहतर समाज बना सकता है।
अच्छा।
एक और विचारक थे थॉमस हॉब्स, जो मानते थे कि इंसान का स्वार्थ इतना खतरनाक है कि उसे काबू में रखने के लिए एक बेहद ताकतवर राजा चाहिए। स्मिथ ने कहा, नहीं, स्वार्थ को अगर सही दिशा मिले,
यानी बाजार और नियमों के दायरे में।
हाँ, यानी प्रतिस्पर्धी बाजार और नैतिक नियमों के दायरे में, तो ये समाज के लिए अच्छा भी हो सकता है।
और उन मर्केंटलिस्ट विचारकों से तो वो बिल्कुल अलग थे।
जैसा हमने पहले बात की, मर्केंटलिस्ट मानते थे कि दौलत सीमित है और व्यापार एक शून्य जोड़ का खेल है, मतलब एक का फायदा दूसरे का नुकसान। स्मिथ ने इसे पलट दिया। उन्होंने कहा कि व्यापार से सभी पक्ष फायदे में रह सकते हैं और मेहनत व सही नीतियों से कुल दौलत बढ़ाई जा सकती है।
बाद के अर्थशास्त्रियों जैसे रिकार्डो या मिल पर तो उनका साफ असर दिखता है, लेकिन कार्ल मार्क्स का क्या? वो तो पूंजीवाद के सबसे बड़े आलोचक थे। स्मिथ और मार्क्स।
हाँ, मार्क्स और स्मिथ दो ध्रुव लगते हैं, है ना? स्मिथ ने जहां बाजार और निजी संपत्ति को तरक्की और खुशहाली लाने वाला माना, हालांकि वो भी एकाधिकार जैसी बुलाइयों के खिलाफ थे, वहीं मार्क्स ने इसी पूंजीवादी व्यवस्था को शोषण और वर्ग संघर्ष की जड़ बताया। ये दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं।
स्मिथ की विरासत आज कैसी है? मतलब क्या उनके विचार आज भी जिंदा हैं या सिर्फ किताबों में हैं?
जिंदा ही नहीं, बल्कि बहुत प्रभावशाली हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस छपते ही हिट हो गई थी। उसने ब्रिटेन और दूसरे देशों की आर्थिक नीतियों पर असर डाला, मुक्त व्यापार की लहर चलाई। 19वीं सेंचुरी में जो क्लासिकल उदारवादी अर्थशास्त्र पनपा, उसकी नींव स्मिथ ने ही रखी थी।
और 20वीं सदी में वहां तो काफी उतार चढ़ाव आया।
बिल्कुल, 20वीं सदी में उनके विचारों को लेकर जोरदार बहसें हुई, जहां एक तरफ मिल्टन फ्रीडमन और शिकागो स्कूल जैसे अर्थशास्त्रियों ने उनके मुक्त बाजार के विचारों को अपनाया और आगे बढ़ाया।
हाँ, उनका नाम सुना है।
वहीं महामंदी के बाद जॉन मेनार्ड कीन्स जैसे विचारकों ने कहा कि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकारी दखल जरूरी है, सिर्फ अदृश्य हाथ पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
अच्छा।
आज भी जिसे नव उदारवाद या नियो लिबरलिज्म कहते हैं, वो अपनी जड़ें कहीं ना कहीं स्मिथ में ढूंढता है।
तो आज उनकी प्रासंगिकता क्या है? हम आज उनसे क्या सीख सकते हैं?
देखिए, आज भी जब हम बहस करते हैं कि बाजार को कितनी आजादी मिलनी चाहिए और सरकार को कितना दखल देना चाहिए, या ग्लोबलाइजेशन के फायदे नुकसान क्या हैं, या फिर क्या पैसा कमाना और नैतिक होना साथ साथ चल सकता है,
ये बड़ा सवाल है।
इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हुए हम बार बार स्मिथ के पास लौटते हैं। और अच्छी बात यह है कि अब विद्वान उनकी दोनों किताबों नैतिक भावनाओं का सिद्धांत और राष्ट्रों की संपत्ति को एक साथ पढ़ रहे हैं।
अच्छा, दोनों को मिलाकर?
हाँ, ये समझने के लिए कि स्मिथ की सोच कितनी संतुलित और गहरी थी। वो सिर्फ बाजार के पैरोकार नहीं थे, बल्कि एक नैतिक बाजार के पैरोकार थे।
उनके कुछ कथन भी बहुत मशहूर हैं। एक तो वो कसाई और बेकर वाला है, वो क्या था?
हाँ, बहुत खूब कहा। ये कसाई शराब बनाने वाले या बेकर की उदारता से नहीं है कि हम अपने रात के खाने की उम्मीद करते हैं, बल्कि उनके अपने हित के प्रति उनके सम्मान से है। वेल्थ ऑफ नेशंस।
और कथन मुझे बड़ा सोचने पर मजबूर करता है, वो श्रम विभाजन के नुकसान वाला। जिस व्यक्ति का पूरा जीवन कुछ सरल कार्यों को करने में व्यतीत होता है, उसे अपनी समझ का प्रयोग करने या अपने आविष्कार का प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं मिलता है,
जो कभी उत्पन्न ही नहीं होती।
हाँ, ये वेल्थ ऑफ नेशन से है। ये आज के दौर में भी कितना सच लगता है ना?
बिल्कुल।
और उनकी पहली किताब थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट से।
हाँ, उससे ये पंक्तियां देखिए जो इंसान के स्वभाव के बारे में है।
मनुष्य कितना भी स्वार्थी क्यों ना माना जाए, उसकी प्रकृति में स्पष्ट रूप से कुछ सिद्धांत हैं जो उसे दूसरों के भाग्य में रुचि दिलाते हैं और उनकी खुशी को उसके लिए आवश्यक बनाते हैं। हालांकि उसे इसे देखने की खुशी के अलावा इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है।
वाह, ये उनकी किताब की शुरुआत है जो बताती है कि सहानुभूति हमारे अंदर कितनी गहराई तक बसी है।
और इसी किताब से एक और जो शायद उनके पूरे नैतिक दर्शन का निचोड़ है।
हाँ, ये दूसरों के लिए बहुत महसूस करना और अपने लिए बहुत कम, अपने स्वार्थ को रोकना और अपने परोपकारी स्नेह का प्रयोग करना मानव स्वभाव की पूर्णता का गठन करता है।
मतलब स्वार्थ और परोपकार के बीच संतुलन।
बिल्कुल, असली कमाल उसी संतुलन में है।
स्मिथ की सोच जितनी गहरी थी उतनी ही बहसें भी उनके इर्द गिर्द हुई हैं। एक बड़ा विवाद रहा है जिसे एडम स्मिथ समस्या कहा जाता है। ये क्या है
एडम स्मिथ समस्या? हाँ, ये सवाल उठाया गया कि क्या स्मिथ की दो किताबों में विरोधाभास है।
अच्छा, कैसे?
क्या वेल्थ ऑफ नेशंस का अपने फायदे के लिए काम करने वाला इंसान और थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स का सहानुभूति रखने वाला इंसान, ये दो अलग अलग तरह के लोग हैं? क्या स्मिथ खुद अपनी बातों में उलझ गए थे?
तो इसका जवाब क्या है? क्या सच में विरोधाभास है?
देखिए, ज्यादातर आज के विद्वान मानते हैं कि कोई असली विरोधाभास नहीं है, ये दोनों किताबें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
अच्छा।
स्मिथ का मानना था कि इंसान स्वार्थी भी है और सहानुभूति रखने वाला भी। बाजार अर्थव्यवस्था स्वार्थ पर चलती है, लेकिन उसे ठीक से चलाने और समाज को बिखरने से बचाने के लिए नैतिकता, भरोसा और सहानुभूति जरूरी हैं, जिनका जिक्र उन्होंने अपनी पहली किताब में किया। यानी कामयाब बाजार सिर्फ मुनाफे की दौड़ नहीं है, बल्कि उसे टिके रहने के लिए आपसी विश्वास और नैतिकता की नींव चाहिए। ये सबक आज भी उतना ही जरूरी है।
और क्या आलोचनाएं हुई हैं उनकी? क्या कमियां निकाली गई हैं?
हाँ, कई हुई हैं। जैसे उनके श्रम मूल्य सिद्धांत की बाद में आलोचना हुई। कुछ आलोचक कहते हैं कि उन्होंने बाजार की नाकामियों, मार्केट फेलियर्स, जैसे प्रदूषण या एकाधिकार बनने की प्रवृत्ति और इनसे पैदा होने वाली असमानता को नजरअंदाज किया। उनका मानना है कि स्मिथ ने सरकारी दखल की जरूरत को कम करके आंका।
और उनके विचारों को गलत तरीके से भी पेश किया गया है, मतलब मिसइंटरप्रेट किया गया है
बहुत ज्यादा। अक्सर उन्हें लासेस फेयर यानी सब कुछ बाजार पर छोड़ दो का अंधा समर्थक बता दिया जाता है।
लेकिन वो ऐसा नहीं थे।
जबकि सच ये है कि स्मिथ ने कभी ऐसा नहीं कहा। लासेस फेयर का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में सरकार का न्यूनतम या शून्य हस्तक्षेप। स्मिथ ने शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, न्याय व्यवस्था और यहाँ तक कि बैंकिंग के कुछ नियमन में भी सरकार की अहम भूमिका मानी थी।
अच्छा।
उनका वो अदृश्य हाथ वाला जुमला पूरी किताब में बस एकाध बारी आता है, पर उसे ही सब कुछ मान लिया गया। वो खुद बड़े व्यापारियों के गुट बनाकर कीमतें तय करने या सरकार से नाजायज फायदे लेने, जिसे आज हम क्रोनिज्म कहते हैं, उसके खतरों से आगाह करते थे।
ये जानना जरूरी है। अच्छा, स्मिथ की शख्सियत भी बड़ी दिलचस्प लगती है। सुना है बहुत भुलक्कड़ थे, एब्सेंट माइंडेड।
हाँ, उनके भुलक्कड़पन के किस्से मशहूर हैं। एक बार वो किसी दोस्त से चमड़ा रंगने के कारखाने में बात करते करते इतने खो गए के सीधे गड्ढे में जा गिरे।
अरे बाप रे।
एक और कहानी है कि एक सुबह वो विचारों में घूम अपने नाइट गाउन में ही घर से टहलने निकल पड़े और होश तब आया जब वो शहर से मीलों दूर पहुंच चुके थे।
कमाल है। और वो बचपन में जिप्सियां द्वारा उठाए जाने वाली कहानी, क्या वो सच है?
हाँ, वो भी है। कहते हैं जब वो बहुत छोटे थे तो कुछ खानाबदोश लोगों ने उन्हें थोड़ी देर के लिए उठा लिया था। घर वाले घबरा गए, पर जल्दी ही वो मिल गए। स्मिथ बाद में मजाक में कहते थे कि अगर वो ना मिलते तो शायद एक बहुत घटिया जिप्सी बनते।
मजाकिया भी थे। निजी जिंदगी में वो अकेले ही रहे, कभी शादी नहीं की।
हाँ, उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपनी माँ के साथ ही ज्यादातर जीवन बिताया। और एक और बात, मरने से पहले उन्होंने अपनी ज्यादातर अधूरी या अप्रकाशित लिखी हुई चीजों को जलवा दिया था।
ओ, क्यों?
पता नहीं क्यों, पर उन्होंने ऐसा निर्देश दिया। सोचिए उनमें क्या क्या खजाना रहा होगा जो हमेशा के लिए खो गया।
हाँ, ये तो दुख की बात। और ये भी दिलचस्प है कि जिस आदमी ने पूंजीवाद की नींव रखी, उसने अपनी ज्यादातर दौलत किताब लिखकर नहीं बल्कि सरकारी नौकरी से कमाई।
बिल्कुल, कस्टम कमिश्नर की नौकरी से। और एक और बात जो उनकी शख्सियत का एक अलग पहलू दिखाती है, वो चोरी छुपे बहुत दान करते थे।
अच्छा
जी। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वो जरूरतमंदों को दे देते थे, लेकिन चाहते थे कि इसका पता किसी को न चले।
तो एडम स्मिथ सिर्फ एक अर्थशास्त्री नहीं बल्कि एक बहुत ही जटिल, गहरे और दिलचस्प इंसान थे। कई परतें थी उनमें।
यकीनन, वो हमें ये सिखाते हैं कि इंसान के अंदर स्वार्थ और सहानुभूति दोनों ताकतें काम करती हैं। एक कामयाब समाज वो है जो इन दोनों को समझता है और उनके बीच एक संतुलन बनाता है। उन्होंने दिखाया कि कैसे निजी हित को
समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये भी चेताया कि इसके लिए नैतिकता, भरोसा और सही नियमों का ढांचा होना कितना जरूरी है।
तो आज जब हम अपनी दुनिया को देखते हैं, जहाँ एक तरफ बाजार और मुनाफे की दौड़ है, तो दूसरी तरफ बढ़ती असमानता और भरोसे की कमी भी दिखती है। ऐसा लगता है कहीं संतुलन बिगड़ गया।
बिल्कुल।
तो शायद स्मिथ का सबसे बड़ा सबक यही है।
क्या सबक?
यही कि क्या हमने उनके विचारों के सिर्फ स्वार्थ वाले हिस्से पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दे दिया है, और क्या हम उस सहानुभूति, विश्वास और नैतिक ढांचे की अहमियत को भूल गए जिस पर स्मिथ ने अपनी पहली किताब में इतना जोर दिया था।
सोचने वाली बात है।
शायद आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था और समाज में इन दो शक्तिशाली धाराओं, स्वार्थ और सहानुभूति के बीच वो सही संतुलन कैसे दोबारा हासिल करें।
हाँ,
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। फिर मिलेंगे अगले अंक में, एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।